नमस्कार, मैं हूं नितिन कश्यप और आप सुन रहे हैं ज्योतिष इन हिंदी पॉडकास्ट। जिन लोगों ने पहली बार हमें ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि ये पॉडकास्ट किस बारे में है। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है, आप इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही उम्दा जगह है। इसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ एनरोल करने के लिए यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट www.astrolifesutras.com। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है एस्ट्रो लाइफ सूत्रास, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे इसी तरह के और शो आपको रेगुलर मिलते रहें। अब और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा।
लगन का मालिक कुंडली से भाग्य तत्व देखते हैं, ज्योतिष की शाखा है एस्ट्रो लाइफ सूत्रास।
आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो मेरे परम मित्र बाबा जीत जी हैं, जो जर्मनी से फिलहाल दिल्ली आए हुए हैं, मथुरा घूमकर आए हैं। और अभी दिल्ली जब हम बैठे थे, दिल्ली हाट जनकपुरी, तो सोचा कुछ ज्योतिष पर गुफ्तगू की जाए और उसमें इन्होंने भी साथ दिया। तो आज हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ पर, कि पत्रिका देखकर किस तरह मैरिड लाइफ की क्वालिटी को जज किया जाता है। उसमें बाबा जी ऐड करेंगे अपना फिलोसफिकल व्यू, क्योंकि जो स्पिरिचुअल नॉलेज इनकी है, मेरे ख्याल से मैं उतना कैरी नहीं करता अपने साथ। इतने बड़ा आदमी मेरे साथ है तो मैं ज़रा समय ना लेते हुए चाहूँगा वो शायद वो चालू करें, वो कुछ बताएं आपको। लीजिए बाबा जी भाई।
हाँ, तो सबसे पहले नितिन जी का बहुत बहुत शुक्रिया एज यूजुअल कि इन्होंने, ये बड़ा यूनिक चीज़ है। जैसा मैंने इनको अभी बोला कि कभी मैंने इतना प्रोफेशनली किसी जगह पे ऐसा एडिट नहीं किया है, तो खैर आज पहली बार सौभाग्य मिल रहा है इनके वजह से। तो हाँ, अभी हम कहाँ पे, विकासपुरी में,
जनकपुरी
में है। तो सर ने बोला कि क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ पे डिस्कस करेंगे, तो मैंने अपने चैनल पे कई बार बोला है इस चीज़ पे, तो मैं यहाँ पे भी दो मिनट बोल देता हूँ कि जब भी हम मैरिड लाइफ का बात करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे या हम वेल एस्टेब्लिश्ड एस्ट्रोलॉजर्स है या कोई भी हो, हम सबसे पहली गलती ये करते हैं कि सीधा सेवेंथ हाउस पे चले जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो सेवेंथ हाउस है वही सब बताता है शादी के बारे में। वेल, ऐसा नहीं है। सेवेंथ हाउस बस ये बताता है कि हमारा पार्टनर से जो इंटरेक्शन है वो कैसा रहेगा, या किसी और तरीके से आप उपापदा से ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो कैसा होगा। खैर, ये सब तो हमारा डेस्टिनी के अनुसार होगा ना, हम तो उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें सबसे पहले हमारा एसेंडेंट देखना चाहिए, जो लगन है, उसके बाद हमें ट्राइन्स को देखना चाहिए, जो त्रिकोण है, पांचवा और नौवा घर। क्योंकि ये तीन जो घर है ना, ये वो बताता है कि हम कौन है। क्योंकि पांचवा घर हमारे जो संतान है उनका है, और जो नौवा घर है हमारे पिता का है, और लगन हमारा है। तो वो इसीलिए त्रिकोण बोलते हैं ना, हम आए हमारे पिता से, फिर हमसे हमारे बच्चे आए। तो ये त्रिकोण के जो स्वामी है, जो लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, क्योंकि वो बताएगा हमें कि हम जीवन में किसी भी चीज के तरफ हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम किस तरीके से देखते हैं। जैसे विवाह हो गया या कोई भी ऐसी चीज, हमारा कैरियर भी हो सकता है जो दसवां घर, छठे घर से देखता है, तो हमारा क्या ओपिनियन है इस पे, हम हमारा दृष्टिकोण क्या है हर एक घर को लेके ना। तो इसीलिए मैंने बहुत बार देखा है जिनकी कुंडलियों में सातवां घर, जैसे आपको पता है शादी या विवाह का तीन घर है, दूसरा, सातवां और ग्यारहवां घर। तो मैंने बार बार ये देखा है कि कुछ लोगों का ना सातवां घर बहुत अच्छा होता है, जैसे सप्तमेश स्वयं राशि का हो उसी घर में, या उच्च का हो, या लगन में या त्रिकोण में बैठा हो, उस टाइप की चीजें मैंने बहुत देखी। लेकिन इनका ये तीनों घर के जो स्वामी है ना, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये अच्छी अवस्था में नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमने देखा है कि मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस पे ऐसे कि जैसा हम शुक्र को देखते हैं बार बार ना, फिर सातवें घर को देखते हैं, फिर कोई बोलता है कि सप्तमेश को भी देखते हैं ना, तो उसके वजह से हमें ये तो आइडिया लग जाता है कि खाली वो सिचुएशन कैसा होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो मैरिज है या शादी है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, वो हमारा पूरा लाइफ नहीं है। तो हम लाइफ को इन जनरल कैसे देखते हैं, हम जिंदगी को, क्या क्या हम में कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ है कि जैसा हमने शादी किया है तो उसी इंसान के साथ रहे ना, संकट आए विपद आए जो भी आए वो कैसा है हमारा। तो वो बस सप्तमेश या सप्तम भाव या शुक्र देखने से नहीं होगा, वो आपको सूर्य देखना है, चंद्रमा देखना है, फिर ये तीनों घरों के स्वामियों को आपको देखना है। तो मेरे विचार में जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है इस जीवन में, तो मैंने देखा है कि अगर किसी का सप्तमेश या शुक्र ठीक ना भी हो तो ऐसा होता है कि मैरिड लाइफ उतना ठीक नहीं जाता है उनका। लेकिन वो आदमी जो है ना, मतलब ऐसा नहीं होता है कि चलो मेरी मैरिड लाइफ तो कुछ है ही नहीं, उसका ऐसा है कि चलो मेरी जिंदगी ठीक है, क्योंकि उसका लग्नेश पंचमेश नवमेश ठीक है, और जो कि मैरिड लाइफ जो सप्तम भाव वो उतना ठीक नहीं, तो वो उसकी कमी उसको खलती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बैठ के रोने लगता है ना, अरे क्या हो गया मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरे साइड पे मैंने देखा है कि जिनका ये तीनों घरों के स्वामी और सूर्य चंद्र लग्नेश ठीक से प्लेस नहीं है कुंडली में, उनका सप्तम भाव कितना भी अच्छा हो, शुक्र उच्च का क्यों ना हो, ये आमोद प्रमोद ये भोग विलास ये सब में रहते हैं, लेकिन अंदर से वो कभी खुश नहीं रहते। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर उनको अच्छा जीवन साथी मिल भी जाता है तो भी उनमें वो टेंडेंसी रहती है कि दूसरे किसी को देखूं मैं ना, जैसे रामायण में हम जानते हैं रावण का जो टेंडेंसी था ना, एक से एक उसके पास जो मतलब उसके पास तो बहुत सारी रानियां थी ना, जैसे मंदोदरी थी, धन्यमालिनी थी, वो मतलब वो सबसे ज्यादा ऊपर है, जैसे मंदोदरी का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी वो उसने सीता की तरफ उसने आग डाला ना, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई उसके वजह से। तो शॉर्ट में बोलूं तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी का कुंडली देखें तो बस ये देख लीजिए कि उसका लग्नेश लगन पंचमेश नवमेश कैसा बैठा है, तो ये आपको बताएगा कि वो आदमी खुद कितना खुश रह सकता है बिना किसी दूसरे आदमी के साथ, है ना। क्योंकि जो हमेशा मेरे गुरु कहते हैं कि अगर तुम खुद खुश नहीं हो शादी से पहले तो तुम शादी के बाद भी दुखी रहोगे। क्योंकि सातवां घर जो है वो क्या बताता है कि हम दूसरों के साथ शेयर क्या करते हैं लाइफ में, राइट। तो हम दुखी है तो दूसरों के साथ हम दुख शेयर करेंगे, हम सुखी है तो दूसरों के साथ हम सुख शेयर करेंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुंडलियां देखे तो सातवां घर देखिए, शुक्र को देखिए, पर ये तीनों को मत भूलिए, ठीक है, यही बोलूंगा मैं इसके बाद।
बाबा जी भाई ने जो बात बोली मुझे वो याद आ रहा था, बुरा जो देखन मैं चला, मिलया ना बुरिया कोई, जो मन देखा अपनो मुझसे बुरा ना कोई। बिना लग्न को देखे, बिना जातक की अपनी नीड को देखे सीधा सेवंथ हाउस पर आना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने रावण और मंदोदरी का दिया। मंदोदरी को जो सती स्त्रियां हैं उनमें बहुत अच्छा स्थान दिया जाता है, उसके बावजूद उसके पति का अपने वैवाहिक जीवन में कितना इंटरेस्ट था वो सब जानते हैं, मृत्यु का कारण जैसे माँ सीता बनी। तो हाँ, 159 की अपनी महत्ता है, ये आपकी परसेप्शन बताता है आपके जीवन को लेकर क्या है, और अगर आपकी परसेप्शन ही गलत है तो आपको कितना ही अच्छी चीज़ क्यों ना मिल जाए तो वो आप उस चीज़ को उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, उसकी तरह एक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे भाभाजीत भाई ने कहा कि लग्न पर हमें ध्यान देना चाहिए, फिफ्थ पर नाइन्थ पर, तो हमें मैं ये कहूँगा लग्न और सेवन्थ दोनों को कंसिडर करते हुए, बिकॉज सेवन्थ हाउस ऑब्वियसली वाइफ का है। और भावजीत भाई एक बात मैं आपको और बताऊं, मेरे पास ऐसे कई केस आए जैसे आपने शेयर किया कि हम लगन देखकर ये बता पा रहे थे कि इसकी मैरिड लाइफ खराब होने के बावजूद इसमें इतना संयम है कि ये उसको चीज को चला रहा है, बिकॉज ऑफ लग्न जो आपने कहा कि 159 अगर आपके अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति का मतलब ये है कि आप वहां पे राशियां देखिए, उसके स्वामी को देखिए कि किन किस तरह का प्रभाव उसके ऊपर है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, इस तरह से, तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा कि आप अपनी मैरिड लाइफ में कैसे हैं। बाकी इस विषय को आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। और
अंग्रेजी में ये आप जो आपने बोला ना कि अच्छा ना होते हुए भी कंटिन्यू करें, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। बैड बार्गेन ना, आपके कर्मा में खराब है, मान लीजिए आपकी बनती नहीं है आपके हस्बैंड या वाइफ से, लेकिन आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। और ये मतलब मैं अपने कोई 20-25 साल के एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप बृहत पराशर होरा शास्त्र में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पराशर मुनि बार 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 ये कह रहे हैं कि जो पांचवा और नौवा घर है वो लक्ष्मी स्थान है।
बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है। इसीलिए जब त्रिकोण और केंद्र के स्वामी एक दूसरे के यहाँ बैठते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, राजयोग कहा जाता है ना। तो वो जो त्रिकोण है वो लक्ष्मी स्थान है, लेकिन आजकल समस्या क्या है कि लक्ष्मी का मतलब सब पैसे से गिनते हैं ना। तो आजकल आप देखेंगे कि जो पंचम और नवम ऐसा नहीं कि उसमें कोई ग्रह बैठा है उसकी दशा आएगी तो आपको 1 करोड़ रुपया दे के जाएगा, ऐसा नहीं है। वो शायद आपके 10वें या 6ठे या 11वें घर से आए ना। लेकिन लक्ष्मी स्थान का मतलब है कि आप अपने में खुश हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है कि हाँ आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपके पास भगवान ने जितना दिया है आपको, चाहे कम दिया है ज्यादा दिया है या जो भी दिया है, आप किसी को, आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते ना, तुलना नहीं करते, अरे उसके पास देखो कितना है मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ तो ऐसा है, तो अगर आप वैसी तुलना करते हो तो आप दूसरों की, अपनी बीवी की तुलना दूसरों की बीवियों से करोगे, जैसा रावण करता था ना, जैसे कि सीता ज्यादा खूबसूरत है मंदोदरी से इसीलिए वो मेरे साथ होनी चाहिए। तो ये इसीलिए पराशर मुनि के स्टेटमेंट के बेसिस पे ही मैं कह रहा हूँ कि त्रिकोण पे देखना बहुत, त्रिकोण को देखना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने कहा कि लगन और ये त्रिकोण मजबूत है तो खराब स्थिति में भी वो कैसे उसको हैंडल करके उसके लाइफ को वो मतलब ऐसा ना समझे कि ये तो श्राप हो गया है मेरे लाइफ में ना, तो उसका वो बहुत अच्छे से बताया आपने।
यहाँ पर ओवर करने से पहले मैं दो बातें और बस उन्हीं की बात में जोड़ना चाहूँगा कि द्विपद राशि, चतुष्पद राशि, ये सब आप बृहत पराशर होरा शास्त्र में इनके बारे में बताया गया है, आप ज़रूर उसे देखें। और उससे जैसा अभी भाभाजीत भाई ने कहा कि तुलनात्मक अगर आपका व्यवहार है कि हर चीज़ में कंपेरिजन कर रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, तो ये वहाँ पर पता लगता है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। भगवान ने चाहा आगे चलकर हम दोनों इस पर कुछ कुंडलियों का एग्जाम्पल लेते हुए आपसे फिर रूबरू होंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू भाभाजीत भाई, आप आए यहाँ पर और
क्यों आपने ये सेटिंग किया पहली बार?
नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
लोग आते जाते सोच रहे ये दोनों पागल क्या कर रहे
पर नहीं, बहुत ही अलग माहौल है, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बहुत आई है, ऐसे में शाम के वक्त जब लोग मना कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए हम लोग घूम रहे हैं।
हम चंद्रमा को देख के ज्योतिष की बातें कर रहे हैं, चंद्रमा वहाँ है देखिए।
जी जी जी, एंड थैंक्स टू एस्ट्रोलाइज सूत्रास टीम, थैंक यू मिस्टर मलिक, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जय श्री राम। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, अगर आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ आप इस ऑडियो शो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ, जय श्री राम।